आते थे और उनकी एक खास खासियत थी, तो जो प्रश्न जो बात चलती थी उसको किस तरह लोग समझते हैं और किस तरह एक्चुअली होता। अब मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, जब मोना शिविर में उनको बुलाया था तो उस वक्त स्वपर प्रकाशक की बात बहुत चलती थी, आत्मा पर कोई जानता ही नहीं है, ये सब बातें चलती थी। तो चेतन भाई का भी प्रवचन था उस वक्त और अपने यहीं मीटिंग थी, तो उन्होंने 12 शास्त्रों में से निकाल के बताया कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक ही है, आत्मा स्वप्रकाशक सिर्फ स्वप्रकाश है और पर को जानता नहीं है। ये बात उन्होंने 12 शास्त्रों में निकाल निकाल के दिया। तो चेतन भाई ने कहा कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूं, क्योंकि 12 शास्त्रों जो उन्होंने संस्कृत में प्राकृत में जो भी पढ़े होंगे उसकी बात, ये खासियत थी उनकी। और कई दफ़े जो बात चलती थी ऐसी कोई एकांत पक्ष लेते थे तो उनका वो हमेशा विरोध करते थे कि आत्मा ऐसा नहीं है, ये सुख का मार्ग नहीं है, सुख का मार्ग तो यही है। ये सब तमचंद जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमें मतलब समाज को बड़ी खोट पड़ी है। अभी हिंदी में खोट का शब्द मालूम नहीं है,
अपूर्ण
क्षति पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में आने वाले विद्वान जो मर लायक हैं अब चले जाते हैं और हमें इसका वो क्षति पता चलती है। बाबू भाई चले गए जो अपने खास आचार से सब पूरा हिंदुस्तान में बाबू भाई का होता था, ऐसे ऐसे कई विद्वान अपने लालचंद भाई चले गए, ऐसे युगल जी चले, बाबू जी चले गए, तो क्षति तो नहीं पूरी हो सकती। अभी फिर भी जो विद्वान है अभी इस वक्त वो उनका पूरे पूरा लाभ ले, उनसे अपना कार्य सिद्ध करे, यही भावना
ट्रस्ट की ओर से,
ट्रस्ट की ओर से मैं हिम्मत भाई बेशब्द हो गए।
शॉर्ट में थैंक यू।
पहले थी जो क्षमा मांगे लो छू, कोई कोई वक्त विषयांतर થઈ જાય છે મારાથી। વર્ષો કેટલા થયા એનું તો યાદ નથી, પણ સૌપ્રથમ ઉત્તમચંદજી ને આફ્રિકા જવાનું થયું અને આફ્રિકા ત્યાંથી એ મંડળ તરફથી રિક્વેસ્ટ હતી કે ત્યાં રહે અને ત્યાંના બાળકોને બધાને નાના મોટા બધાને એમનો લાભ મળે। આફ્રિકા જતા પહેલાં દાદર આવેલા, બોમ્બેથી જવાનું હતું એટલે દાદર રોકાયેલા હતા, નરસિંહ કાકા સાથે એમને જરા વધારે ગાઢ મિત્રતા અથવા તો જે ગણીએ તે રીતે, એ આફ્રિકા જતા પહેલાં અહીંયા હતા ત્યારે એમણે આચાર્ય અમૃતચંદ્ર કર્તૃત્વ ઉપર એક નિબંધ લખેલો હતો અને અમૃતચંદ્ર આચાર્યનું એમણે જે આખું જીવન ચરિત્ર એમનું બધું જ જેટલું જે એમના પાસે હતું એ પ્રમાણે ગોચ્યું, એમણે એ નિબંધ તૈયાર કર્યો અને એ નિબંધ ઉપર PhD થયા અહીંયા। એ નિબંધ લખવામાં એમણે પછી અમારે ત્યાં દાદરમાં અમે રિક્વેસ્ટ કરેલી કે આને છપાવવું હોય તો કઈ રીતે કરીએ આપણે અને આપે આમાં કઈ રીતે એમ કે યોગદાન આપેલ છે, ત્યારે આમ કહેવાની જણાવની ઈચ્છા નહોતી, બહુ નહોતું કહેવું એને, પણ એમણે ત્યારે એટલું કહેલું હતું કે ઇંગ્લેન્ડ જર્મની ને ફ્રાન્સ ત્રણેય જગ્યાએથી શાસ્ત્રો મંગાવી એના આધાર મેળવી 169 શાસ્ત્રોનું એમાં એને દોહન એટલે એમાં એમાંથી એને તપાસ કરી અને આચાર્ય અમૃતચંદ્ર ઉપર એમનો જે નિબંધ લખેલો હતો
PhD
અને એમાં પાછું વધારે, એ વખતે એમને તો ડ્યુટી ચાલુ હતી, દિવસમાં તો કામ કરી શકતા નહીં, રાતના બંને જણા થઈને रात्रि एक वगे बे वगे त्रण वगे सुधी आ निबंध लखी अने एमणे आ सूर प्रबंध लखेलो हतो ए फक्त जाण माटे
मैं पंडित श्री अपने राज संजीव जी गोदा जी से उनका जो पत्र आया है पढ़ दीजिए आप यहाँ पर। उनके सुपुत्र डॉक्टर विवेक कुमार जैन छिंदवाड़ा से यहाँ नहीं आ सके, तत्काल में टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने पत्र मेरे पास भी भेज दिया, अभी आया होगा आपके पास। हाँ तो मेरे पास भी आ गया, वो भेजने वाले थे, आप उनको और जो भी आप जानते हैं उनके बेटे का पत्र।
ओम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विवेक जी को शायद आप लोग जानते हो या न जानते हो, लेकिन मुमुक्षु समाज में आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पंडित उत्तम चंद जी साहब के व्यक्तित्व कर्तृत्व को न जानता हो। आज मुमुक्षु समाज के बीच में उनका परिचय बतलाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, वो उनका परिचय परिचय का मोहताज नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति थे, जहाँ खड़े हो जाते थे, जिस सभा में आकर के वे वक्तव्य देते थे, नींद लेने वालों की भी नींद उड़ जाया करती थी। हंसते हंसते तत्व की बात को बता देना, ये उनकी बड़ी अद्भुत शैली थी। और इसीलिए उनका प्रवचन दैनिक शिविरों में अंत में रखा जाता था, जिससे वो श्रोताओं को जगा करके तत्व दिखा सके। उन्हें बड़ी गजब की प्रतिभा थी, गजब की शैली थी, उनकी समझाने की शैली थी, तार्किक व्यक्तित्व थे। और मैं यदि ये कहूँ कि गुरुदेव की परंपरा में यदि टोपी वाले विद्वानों को देखें भाई साहब, तो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। टोपी वाले विद्वानों में सबसे कम उम्र के विद्वान थे जो टोपी लगाया करते थे।
अभी एक जतीश भाई है,
उनसे कम तो उम्र नहीं होगी,
नहीं बड़े हैं जतीश
जो भी है। लेकिन तार्किक शैली थी, गजब का काम उन्होंने किया है। मेरा बहुत निकट से उनके साथ में परिचय रहा। वैसे तो ब्रैम्पटन जब प्रतिष्ठा हुई कनाडा में, तो वो प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के 5 दिन पहले जाना का शिविर, माने 15 दिन तक लगातार 24 घंटे, मतलब कितने घंटे हुए, 360 घंटे का हमारा साथ रहा। माने एक ही रूम में हम रहते थे, होटल के एक ही रूम में ठहरे थे, वो हम दोनों एक ही साथ सोते थे, साथ में ही उठते थे, चाय दूध पीना तो साथ में, भोजन करने जाना तो साथ में, मतलब वो दोनों हम साथ ही रहते थे। आपने देखा है, आप भी थे सुनील भाई वहाँ। माने 15 दिन तक लगातार निरंतर जो उनके परिचय में आए, वो बहुत निकट का परिचय था। और सहज ही जो उनकी महिमा पहले से थी, पहले भी हमेशा सदा मिलते रहते थे, जानते रहते थे, लेकिन जो निकट का परिचय हुआ वो बहुत ही अद्भुत रहा। बहुत वात्सल्य था उनके हृदय में, जनवाणी के प्रति, सिद्धांतों के प्रति कहीं समझौता नहीं करने वाले। माने जब कभी जनवाणी के प्रसंग में कहीं तत्व ज्ञान को लेकर के कहीं प्रसंग खड़ा हो जाए, तो कोई समझौता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी धन संपन्न हो, वैभव संपन्न हो, प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। माने ऐसे निर्भीक वक्ता थे वे। अभी मार्च में ही रिसेंट में मैं नैरोबी था, जैसा भी बतलाया पूर्व वक्ता ने, नैरोबी में 15 दिन वहाँ रहा। मुझे मालूम था वे नैरोबी वहाँ गए रहे, लेकिन जब वहाँ लोगों के हृदय में मैंने उत्तम चंद जी साहब को देखा, तो वास्तव में वो अद्भुत थी बात। 2 साल में गुरुदेव ने जब नैरोबी में पंचकल्याण कराया, उसके बाद उत्तम चंद जी साहब 2 साल तक नैरोबी में रहे, लगातार 2 साल रहे। और आज नैरोबी मुमुक्षु मंडल में जितना भी तत्वज्ञान के गहरे संस्कार दिखाई देते हैं, वे सब के सब लोग आज पंडित जी साहब का इतना उपकार मानते हैं, वो मैंने वहाँ निकट से लोगों के वक्तव्य जब सुने तो उसे महसूस किया।
उनको पहले हिंदी सिखाई, फिर तत्व सिखाई।
हाँ, उनको पहले हिंदी सिखाई और खुद ने गुजराती सीखी। उत्तम चंद जी साहब ने वहाँ गुजराती सीखी और गुजराती इतनी सीख ली कि वे गुजराती आराम से पढ़ने की, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ आराम से, लेकिन वे गुजराती में फ्लुएंटली बोल सकते थे, चर्चा कर सकते थे, इतना उन्होंने वहाँ अभ्यास किया। जब देह विलय होने वाला था, उस समय की एक घटना और सुनाना चाहता हूँ। मैं शायद उस समय अमेरिका में था, डलास वगैरह में श्रुत पंचमी का प्रसंग था, कुछ फोन पर संपर्क चलता था विवेक जी से ही, उनके सुपुत्र हैं विवेक जी, अच्छे विद्वान हैं। तो श्रुत पंचमी के दिन छिंदवाड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। डेथ होने के मैं समझता हूँ कोई 2-5 दिन 5-7 दिन पुरानी बात होगी। शोभा यात्रा उनके परिवार के घर के नीचे से निकली। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, स्थिति नहीं थी शरीर की कि वे उतर सकें, लेकिन जिनवाणी माँ की शोभा यात्रा नीचे से निकलनी थी तो वे ऊपर से नीचे उतरे जिनवाणी माँ के दर्शन करने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा, और वहां उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया और 15 मिनट तक उसी प्रकार वक्तव्य दिया जैसे वे स्वस्थ अवस्था में दिया करते थे। माने जिनवाणी की बात जब हृदय में से निकलती है, जब वाणी के माध्यम से आती है, तो वो रोग एक तरफ रह जाता है, और रोग क्या राग से भिन्न चैतन्य तत्व जब दृष्टि का विषय बना हुआ हो तो वो जब वाणी में निकलता है तो जिस दृढ़ता के साथ में निकलता है। ये लोगों ने वहाँ, छिंदवाड़ा तो आपके मौसी है ना, तो देखा है वहाँ लोगों ने, निकट से देखा है, वो तत्व का बल ही था जिसके बल पर इतनी अधिक प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ, समाधि पूर्वक उन्होंने देह को छोड़ा। माने ऐसे विद्वान हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमें अत्यंत दुख है इसके प्रति। और निश्चित रूप से सदगति होनी है तो बहुत छोटा वाक्य है, निकट में सदगति होनी है, अल्पकाल में एकाध भाव में ही यदि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मेरे पास पत्र प्राप्त हुआ उनके सुपुत्र डॉक्टर विवेक जी का, मैं वो पढ़ करके आपको 2 मिनट में सुना देता हूँ। माने उनके क्या भाव हैं, देखो एक पुत्र के पिता के प्रति भाव उत्कृष्ट हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये साधारण बात नहीं। समाज जिन्हें बहुत ऊंची दृष्टि से देखता हो ये अलग बात है, क्योंकि व्यक्ति गद्दी पर और कुछ होता है लेकिन परिवार के बीच में और कुछ होता है। गद्दी पर तो आप देखते हैं तो सिर्फ यही देखते हैं ना कि कितने अच्छे विद्वान हैं, कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। अरे समाज के सामने गद्दी पर बैठ करके तो जिनवाणी की बात ही कहेंगे तो आपको अच्छा अच्छा ही दिखेगा, लेकिन परिवार में भोजन करते समय, नहाते धोते समय, खाते पीते समय, बच्चों को संभालते समय, परिवार के प्रति दायित्व का निर्वाहन करते समय वे कितने उस पर खड़े उतरते हैं, यदि परिवार जन उनकी तारीफ करते हैं तो वास्तविक तारीफ कहलाती है। तो विवेक जी के हृदय में कितनी महिमा थी वो मैं यहाँ आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी, आज भी पथ यथावत है किंतु हाथ थामकर मंजिल की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक मेरे पिताजी के विरह से मैं अपने आप में एक अकेलापन अनुभव करता हूँ। उनके देह परिवर्तन कर हम सबके बीच से चले जाने के पैरा के प्रसंग से केवल आत्मार्थी दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज ने एक जिनवाणी पुत्र को ही नहीं खोया है, अपितु मैंने ऐसे एक धर्म पिता को भी खोया है जिन्होंने न केवल मुझे जन्म से ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के सम्यक मार्ग पर चलना सिखाया, साथ ही साथ एक ऐसे जैनी गृहस्थ के जीवन की धर्मानुसार न्याय नीति पूर्वक जीवन शैली के संचालन का पाठ भी पढ़ाया। अभिशाप में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। बाबू युगल जी साहब की ये पंक्तियाँ मुझे मेरे पिताजी के जीवन की सम्यक परिभाषा के समान ही लगती है। पिताजी का संपूर्ण जीवन मानो कठिन संघर्षों के उतार चढ़ाव की कहानी है, जिनके जन्म के कुछ ही समय बाद मात्र 3 वर्ष की आयु माता का तथा 7 वर्ष की उम्र में पिताजी का निधन हो गया। परिवार में कोई बड़े पालक के अभाव व आर्थिक कठिनाई के बाद भी स्वयं की लगन से उन्होंने अपने नाम उत्तम को सार्थक किया। मैंने अपने बचपन से जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्हें जिन सिद्धांत, न्याय, धर्म नीति के लिए सदैव ही संघर्षरत ही देखा। वीतरागी जिन सिद्धांतों का निरंतर पठन, चिंतन, लेखन ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा। यही कारण है कि कितनी ही विषम परिस्थितियों में वे कहते थे, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, अनहोसी अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरारे। मुझे हमेशा वह एक बात कहा करते थे कि वस्तु की स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती, कर्मोदय के उदय को धैर्यपूर्वक देखना, जानना एवं आत्मार्थी का परम आवश्यक कर्तव्य है। शायद ये जिन वचनामृत के निज हित की भावना से सेवन का ही फल था कि इस जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शारीरिक तीव्र वेदना वाली बीमारियों के चलते हुए भी उन्होंने अपनी देह को पड़ोसी की तरह देखकर समता भाव पूर्वक ही देह का त्याग समाधि पूर्वक किया। पिताजी को उनकी जन्मदात्री माँ के आंचल की छाया भले ही अति अल्प मिली हो, पर उन्होंने अपने धर्म माता जिनवाणी की गोद में बैठकर आचार्यों के हृदय को जिस गहराई से देखा, पढ़ा व समझा, वही तत्व आराधना उनके भावी जीवन की सार्थकता की कारण बनेगी। निश्चित ही मन कहता है उनकी आत्मा शीघ्र ही निज हित के उग्र पुरुषार्थ को करते हुए अभ्युदय को प्राप्त होगी। यद्यपि उनके जीवन संबंधी अनेक प्रसंग जो मेरे अंतस्थल में अभी भी जीवंत रूप से हिलोरे ले रहे हैं, उन्हें मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त करना भी चाहता हूँ। मेरी भावना है कि उनके धर्म मार्ग के साथी मुमुक्षु आत्मार्थी भाई बहन उनके जीवन यात्रा के सभी पहलू को जाने, जिससे उन्होंने भी एक जिनवाणी के सुपुत्र की संपूर्ण जीवन का परिचय हो सके। धर्म को मात्र चर्चा व्याख्या का विषय ही नहीं अपितु चर्या में भी कैसे लाया जाए, इस विषय का ज्ञान से निश्चित ही एक प्रेरणा मिलेगी। अपने इन्हीं अंतर्भावों के अनुसार मैं पिताजी के संपूर्ण जीवन व्रत को मेरी जीवन गाथा संघर्ष से समाधि तक शीर्षक के माध्यम से मुमुक्षु समाज के समक्ष अपनी लेखनी के माध्यम से लाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने वो कोई एक पुस्तक और लेख जैसा लिख रहे हैं जिसमें अपने पिताजी के बारे में और जो भी अनुभव थे उसे प्रस्तुत करेंगे। विचारों की लहरों को विराम देते हुए मेरी यही भावना है कि मैं मेरे पिताजी के समान वीतरागी देवशास्त्र गुरु के निर्दोष जिनमार्ग की प्रभावना में आत्महित की भावना से तब तक अनवरत समर्पित रहूं जब तक मुझे मेरे शाश्वत सुख रूप निज पद की प्राप्ति न हो जाए। डॉक्टर विवेक जैन, छिंदवाड़ा। और बहुत सुंदर भाव उनके माध्यम से व्यक्त किए गए। सच में हमने उनके वियोग के माध्यम से जिनवाणी के एक सच्चे सपूत को खोया है और आज उनका चिर वियोग निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करने में मुमुक्षु समाज में कोई दूसरा समर्थ नहीं है, एक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। हम ये भावना भाते हैं यहाँ कि वे शीघ्र ही सदगति को प्राप्त हों, इसी भावना से बात कही। हाँ, टोडरमल भाई साहब कह रहे हैं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से भी आप श्रद्धांजलि की बात कह देवें। टोडरमल स्मारक में तो श्रद्धांजलि सभा रखी थी हमने, तो जब देह विलय का समाचार वहाँ टोरंटो में सुना था तो वहाँ भी आदरणीय दादा के सानिध्य में शोक सभा रखी थी और शोक प्रस्ताव पारित किया था कि पूरा मुमुक्षु समाज, सभी संस्थाएं, मुमुक्षु समाज की कोई भी संस्था हो, सब उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जीवन भर ऋणी रहेगी। उनका लाभ तो नहीं मिल सकता लेकिन आज भी उनके प्रवचन हमारे बीच में उपलब्ध हैं, वे निश्चित रूप से समाज को जगाने के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं।
समय दिख होता जा रहा है, मैं आप बोलिए दो भाई बोलो आप।
बाबू भाई हमारे बीच में अपने भाव व्यक्त करें।
आज का दिन में जो अपने प्रसंग जो शोक सभा रखी है, मैंने एक श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। मैं दो ही बातें कहूँगा। एक बाबू भाई के साथीदार थे और जहाँ जहाँ पंचकर्म प्रतिष्ठा अगर कोई पर कार्यक्रम हो गए तो दोनों ही एक कंधे से कोई भी प्रकार का हुए तो उस समय में और सिद्धांतों में कभी भी बांध छोड़ नहीं थे। जिनागम का आधार हृदय में पूरे पूरा था। एक बार हमारा प्रत्यक्ष सहयोगी भाई थे और भ्रष्टा को भी पहले पंचकर्म प्रतिष्ठा थे। माने ऐसा नहीं कि सबको अच्छा लगे ऐसा बोलो, ऐसा नहीं। तो उस समय में जो प्रसंग बना था तो प्रवचन एक घंटा तक कोई प्रसंग के ऊपर नहीं आया। कोई प्रसंग को याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम सबको अच्छा लगे उन्हें सबसे अच्छा हो उनका अभिप्राय था। तो ऐसे बाहुबली के साथ और चौधर संस्था बनी थी स्मारक भवन में सुनने और मंगलायतन में भी हमारा गुजरात में जो बच्चे को हिम्मत अगर सब जगह तरोत ख्याल वो सब प्रतिष्ठाओं के समय में उनकी हाजिरी उनका तत्व का आवे। और एक दूसरी बात है कि जो अफ्रीका की बात करती है तो अफ्रीका की उनमें फाइल बनाई है ढाई वर्ष में द्रव्य गुण पर्याय से लेकर के पूरा उपादान पूरा सिद्धांतों की फाइल भी लिखी हुई है। उस समय के फोटो बड़ो भाई तो बोले कि हमारे वहाँ हमारा कम भाग्य हुआ कि वो छोड़ करके उनको जाना पड़ा, नहीं तो हमारी और अफ्रीका की दिशा बहुत अलग होगी। आज तो हमको चढ़ाव उतर जितना पड़ा है तत्व के बारे में वो पूरा जीवन बना रहेगा, तो उनकी भी भावना होती। तो ऐसी बहुत ही प्रकार की स्थिति पाटिल जी के साथ भी उनका पूरे पूरा सहयोग था, माने जो जो क्षमता। तो ऐसे जो महान तत्वज्ञान गुरुदेव की बात को पूरे पूरा देश विदेश में फैलाने के लिए उनकी जो भावना थी वो भावना अंत तक भी रही, यहाँ छपा हुआ था भी तो आने वाले ऐसा, और पीछे दो तीन दिन में वो देह छूट गया था। तो ऐसी जो अपना एक महान युग टोपी वाले कम रहे भाई तो क्या करे, वो तो टोपी तो सिरोध्याय थी और गुरुदेव के सामने टोपी वाले बहुत दिखते थे, तो आप जो फोटो देखेंगे तो पूरा पूरा। तो ऐसा जो योग था तत्व से ओतप्रोत थे और पूरा जीनागम के सिद्धांत में कोई भी किसी को कड़ावट लगे सभा देख करके नहीं, हिनवानी माता क्या कहती है उसके वो मक्खनबाजी बिल्कुल नहीं थी तत्व के जो ऐसे। हमने तो बहुत ही उनके बचपन से शिविरों के साथ उनके जो लड़के लड़कियाँ और बाकी भी कई ऐसी परिस्थिति थी वो पूरी मुझे बात सुनाई थी वहाँ इंदौर में, और जो बाहर गए थे छलावल में तो उस समय में हम साथ में थे, मुझे पता है पूरा पूरा ख्याल है। अभी वाणी से तो क्या होता है, वो तो जो है हाँ। सो है उत्तम, तो उत्तम ही है। तो ऐसे उत्तम पद की प्राप्ति मंगल पद की प्राप्ति होए ऐसी मैं भावना करता हूँ, और थोड़ा काल में भी विदाई तो लेना है तो साथ में लेकर के चर्चा करेंगे। जय
अब मैं यद्यपि बहुत लोगों की भावनाएं होंगी लेकिन मैं बहुत मैं उनका बचपन का बिल्कुल साथी हूं। संक्षेप में बताऊं 1 जुलाई 1945 को उनका जन्म हुआ सागर जिले में नन्ही देवरी करके एक छोटा गांव, मेरे गांव के ही थोड़ी दूर होगा। और बाद में वो अपने बुआ के पास पढ़ने सिवनी गए, फिर एमए वगैरह सागर से किया। उनका देह विलय 30 जून 2018 को हुआ, मैंने पूर्ण 73 वर्ष के हो गए थे, मेरे से वो 6 माह 13 दिन बड़े थे। उनकी बहन मेरी बहन एक ही घर में दी थी, हम लोग बचपन से गर्मी में जाते चर्चा वार्ता करते। उनके बहनोई जी को नाटक समय सार कंठस्थ था, भले 6-7 क्लास पढ़े थे, हम लोग सुन सुन के याद करते थे और सुनाए करते थे बहुत सारी चीज़ें, तो वो याद नहीं लूँगा। और उसके बाद मैं भोपाल पढ़ने आया, मैंने सबसे पहले गुरुदेव श्री को सागर विद्यालय में संस्कृत विद्यालय 1957 में देखा था, 1963 में मैंने और उनने भोपाल में देखा। तब हम दोनों सुने तो गुरुदेव बोले भगवान आत्मा, किसको भगवान आत्मा बोलती गुरुदेव, हम लोग छोटे छोटे थे, रुचि तो थी यह जी भगवान आत्मा परमात्मा, वो चले गए और मैं अपना पढ़ के। फिर मैंने 66 में सोनगढ़ गया शिविर अटेंड किया पूरा, 69 में फिर गया, तब मेरे को उत्तमचंद जी को मैंने बुलाया सिवनी से, वो कैसे तकलीफ में सोनगढ़ पहुँचे वो बताना जरूरी है। इंदौर से बस में बैठे अहमदाबाद तक 10 घंटे बस में खड़े खड़े अहमदाबाद पहुँचे, फिर सोनगढ़ जाना, वहाँ अभय जी थे मेरे छोटे हैं और ये बड़े, तीनों में एक बिल्कुल बहुत वो हो गई। और गुरुदेव श्री के पास जब उनको मालूम पड़ा गुरुदेव श्री को कि सिवनी में एक अकेला ये लड़का, और वहाँ घोर विरोधी सिवनी के एक महापंडित जिन्होंने महाबंद का पहला भाग संपादित किया है, ख्याल होगा डॉक्टर क्या नाम समीर चंद दिवाकर, विद्वान थे इसमें दो रहे लेकिन बस गुरुदेव का विरोध, तो उनसे अकेले उत्तम चंद जी जूझते थे। और जो ये बात चलती थी निश्चय पूर्वक व्यवहार की, उनको कहाँ से उस समय कल आई, जब छोटे थे तब ना, तब तो संबंध भी नहीं हुआ था, तो बोले बोलो पंडित जी वर के बिना बारात होती है क्या, मैंने निश्चय के बिना बारात का क्या वैल्यू, ये गुरुदेव सामने बोला। गुरुदेव श्री ने खुश होकर के उनको खानिया तत्व चर्चा भेंट की, मेरी भी इच्छा हुई तो हीरालाल जी काला भावनगर ने मुझे दी, ओम कर देते थे गुरुदेव। वहाँ पर ही 1969 में हम तीनों का निर्णय हो गया। मेरा तो निर्णय हो गया 100%, मैं तो गुरुदेव श्री की लाइन पर ही चलूँगा, शुरू से रुचि थी। वो गए, सर्विस लगी और सर्विस में एक जो भी मध्य प्रदेश का मिनिस्टर था, चुनाव का समय था, तो स्कूल के प्रिंसिपल हो चुके थे। स्कूल में बच्चे बहुत रहते हैं, 500-600 जितने भी होंगे उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल। उनसे जाके कहा छुट्टी कर दो बच्चों की, मुझे सभा करना है। उन्होंने कहा छुट्टी कैसे कर दें, हमारे पास कोई कलेक्टर का ऑर्डर नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, छुट्टी किस आधार पर कर दूँ। समझता नहीं, बहुत डांट, नहीं की उनने छुट्टी। उसने उनका ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया, पूरी ज़िंदगी में कहाँ 2-3 बस बदले, नदी क्रॉस करके जाएं, चिंता नहीं की, पढ़ते रहे। हमको पत्र आता था सब। इसके बाद नैरोबी की भी घटना, पहले उनका जो कार्य क्षेत्र है वो ही बताऊँ। PhD तो की अमृतचंद्र आचार्य के ऊपर, और जो दादर मंडल का सहयोग काफ़ी रहा, और छपा अपने टोडन स्मारक से, और उसके बाद एक अपने जाम क्या नैरोबी के जो प्रमुख थे जेठा भाई, हाँ, उनका मेरे को पत्र आने लगा। खेमचंद भाई ने कहा ये लड़का छोड़ने वाला, सर्विस छोड़ भी दी थी 6-7 साल बाद, सबको पता होगा फिर ज्वाइन की क्या क्या हुआ, बहुत पीछे पड़े थे। तो मैंने उत्तम चंद जी से कहा कि भाई तुम जाओ, तुम लोगों की बात होती रहती थी। MP सरकार ने उनको मैक्स मूलर भवन पूना भेजा एक अतिरिक्त भाषा सीखने के लिए, तो गुजराती वहाँ उन्होंने फ्लुएंटली सीख ली थी, और उसके बाद ही उनका वो निमंत्रण हुआ। तो मैंने जेठा भाई को लिखा था कि मेरे ही ब्रदर आ रहे हैं और मेरे से भी अच्छे तर्क के साथ समझाने की कला है उनमें, कौशल है, तो उनका फिर हो गया। अब लेकिन इसके पहले वो अपना पंचकल्याणक में जो जाना था, वहाँ से 30 टिकट थे, इसमें हम दोनों का नाम भी था, लेकिन लास्ट में हम दोनों का नाम कट हो गया। अब वो यहाँ जिक्र करने जैसा नहीं, वो मेरे पास आए भोपाल। मैंने उत्तम चंद जी तुम जाओ, मेरे पास अलग टाइप की वो है व्यवस्था, आपको जाना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था भी चिंता मत करो, परिस्थितियाँ तो थी ऐसी। और वो गए, और पुण्य योग था कि फर्स्ट फ्लाइट में उनको चांस मिल गया और 8 दिन पहले ही पहुँच गए पंचकल्याणक में, और वहाँ चला। इसलिए जो आप बता रहे हैं ना, इतना याद करते हैं, नैरोबी भरे उन्होंने पढ़ाया। और उसके उस समय विवेक मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का था, और 2 बच्चियाँ थी, तो आए वापस फिर ज्वाइन किया। उनका जो कार्य क्षेत्र रहा, बहुत काम किया। ये जो समय सार रखा ना बड़ा वाला, ये दोनों टीकाओं का पहले उनने किया, अपने कुंद कुंद तीर सुरक्षा ट्रस्ट से ही छपा है, कान कुंद कुंद कान तीर सुरक्षा से ही छपा है, और पंचायत टीकाए का भी छप के आ चुका है, यहाँ प्रवचन ही चल रहा है, जिसका विमोचन से टोटल स्मारक में हुआ था ऐसा ख्याल है मुझे। और अभी तीसरा प्रवचन सार का वो कार्य कर रहे थे, और देह एकदम से हालत खराब होने लगी। पूरा कर लिया उन्होंने, आदरणीय अपने बसंत भाई जी दोषी उनसे मिलने इंदौर गए, उनसे फ़ोन पर बात हुई कि कोई कार्य बचा है, तो धीरे धीरे जो बोलते थे उसके 7 दिन बाद ही तो ऑफ हो गए थे, 7-8 दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि प्रवचन सार का काम पूरा हो चुका है, दोनों टीकाओं के साथ, जैसे समय सार पंचायती का ऐसी प्रवचन से, तो बोले उसका संपाद की या प्रस्तावना, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। तो वसंत भाई बोले कि वो कर देंगे इसको, फिर वो तो आ गए। अब मैं उसी समय मैं खुद इतना सख्त बीमार था कि मैं कह नहीं सकता कि मैं भी टिक गया। वो वर्टिगो होता ना, बहुत भयंकर सीवियर स्थिति थी, ना इंदौर जा सका मिलने, और वो भोपाल से निकले तो भोपाल में भी नहीं जा सका। एक थोड़े समय बाद 1 घंटे को रुके होंगे, मैं 10 किलोमीटर दूर था, और वो सिवनी छिंदवाड़ा चले गए, और जागृत अवस्था में पूरा उनका बहुत बुलंदी से काम हुआ। एक और काम था वो स्तुति विद्या, जो समझी जी स्तुति विद्या समंत भद्राचार्य का, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। एक साल पहले ही हमारा उनका ये वार्तालाप हुआ था, केमचंद जी तुम अब टाइम दो मेरे पास या मैं वहाँ हूँ, क्यों दोनों मिलकर के बहुत सारा काम पेंडिंग है जिनवाणी का, कुछ इंग्लिश का भी, कुछ उसका भी, इंग्लिश भी वो जानते थे, हमें इंग्लिश में किया, सब कुछ यानी अच्छे उससे वो थे, पूरे जीवन इसमें लगाए, पूरा जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन निर्भीक। और अगर मैं कहूँ आज कि वो प्रथम श्रेणी के प्रवचनकार विद्वत रत्न थे, जैसे युगल जी, बाबू युगल जी, डॉक्टर भारिल जी, इस श्रेणी के विद्वान थे। कहीं पर भी तर्क न्याय से कोई भी चीज़ समझाना हो, कोई कहीं पर भी अति देखें तो उसको बैलेंस करने की ताकत उनमें तत्काल रहती थी। इसमें दो राय नहीं है, और मैं मेरे लिए तो ये वज्राघात हुआ जब उनका सुना। जब उनको हार्ट अटैक हुआ था, मैं खुद डॉक्टर करण साय के पास पूना गया था, मिला था, बोले ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो गए थे। लेकिन भोपाल में पंचकलण चल रहा था, हम साथ भोजन कर रहे थे, ये करीब तीन फरवरी करीब की बात है, 1 से 6 फरवरी पंचकलणक था, आप भी आ गए थे बाबू भाई वहाँ। तो उसी समय उनको भोजन के समय एलिमोनी क्या बोलते हैं इसको, कैनल जो होता है भोजन नली, बोले उसमें तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तो वो तकलीफ मैंने क्यों होती कैसी, युगानुयुग समय डॉक्टर करण साहब भी आ गए थे, तो मैंने कहा तुरंत चेक कराओ, और उनको भेज करके कराया तो उसमें बायोप्सी में निकल आया ये प्रॉब्लम है। तो तुरंत उनको बाई प्लेन वो पूना भेजा, अभी साथ गए डॉक्टर साहब, और वहाँ ट्रीटमेंट चला। उसके बाद वो कहीं बड़ौदा, इंदौर, सब जगह चलता रहा, और लास्ट में इट वॉज नेचुरल के मतलब उसका तो जितना था वो नियोग बना। लेकिन मैं विवेक को मैंने मिलने गया था उनकी शांति विधान पर 12 जुलाई को, अस्वस्थ अवस्था में भी बहुत चीज़ें हैं, हम संक्षेप कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भूलते थे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो काम पूरा हो जाए स्तुति विद्या का या प्रवचन सार का। तो विवेक मेरे को बोला, चाचा जी बोलता है, और वो मैं 2-3 दिन वहाँ रुका था छिंदवाड़ा उस अस्वस्थ अवस्था में भी, तो उन्होंने बताया विवेक जी ने कि सवेरे उठ जाए 4 बजे, फिर रात में काम पूरा करने, अस्वस्था की अवस्था में भी कि मेरे जाने से पहले काम पूरा हो जाए। ये नेचुरल है, जो जिनवाणी के सपूत थे और उन्होंने इस जिनवाणी को किया। हम आप आज जो उनके लिए आदरांजलि कहो, स्मरणांजलि कहो, एक जिनवाणी माता के लिए स्मरणांजलि है ना, उनके लिए वो है कि ये अपने हृदय में सदा विराजमान रहे, और वो तो निश्चित ही सुगति को प्राप्त हुए हैं और अल्पकाल में सिद्धिधाम भरेंगे। हम आप भी इस तरह की उनकी जीवन से बहुत प्रेरणाएँ ले सकते हैं। हम यहाँ सब तो नहीं सुना सकते, लेकिन जो कुछ इन्होंने भी बता दिया, और इस तरह से उत्तम चंद जी अकेले, और भी किताबें लिखी शासन विरोधी समय सार, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं, शासन देवी देवता आदि, बहुत तगड़े तर्कों के साथ। और एक बार इंदौर यूनिवर्सिटी से वहाँ के जो अपने प्रोफेसर जमनालाल जी सभी जानते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा उत्तम चंद जी आप एक जैन धर्म में परमाणुवाद पे या कोई इस पे लेख दो। मेरे से भी कंसल्ट किया उन्होंने, बहुत विस्तृत लेख लिखा था, उस पे ही कोई पीएचडी कर ले। और वो वहाँ पढ़ा गया था उनके वहाँ पर अहिल्याबाई, क्या नाम यूनिवर्सिटी का नाम है ना, वहाँ पर पढ़ा गया था। इस प्रकार से तो वो सारा जीवन उनका रहा, और लास्ट में वो कैनेडा पंचकलणक में गए थे। कैनेडा पंचकलणक में गए तो अपने साथ आटा साथ में ले गए, आप सोच सकते हैं क्यों, वहाँ पता नहीं किस मर्यादा का कब का कैसा चलता है, मुझे बताते थे सब, फिर हो गई सारी व्यवस्था। माने विवेक पूरा वो रखते थे सारी चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वो नहीं था, लेकिन बोले अपन जिस जीवन में पले पुसे हैं क्यों हम उसको वो करें, ऐसा मुझे बताया था उन। चलिए इस प्रकार से हम आप सब और मोटानी जी ने ट्रस्ट की ओर से, मैं अपने बड़े भाई के नाथ मोना की ओर से, आप कोई बोलना अच्छा रहेगा मोना की ओर से। और एक बात बीच में सुना देता हूँ, आई आई कि हम जब अध्यात्म सर्कल में जाते थे तो एक बार ऐसा हुआ भारतीय विद्या भवन में, मोटानी जी आप भी थे मुझे ऐसा ख्याल है, डॉक्टर साहब भी थे, तो दिनेश मोदी लग पड़े डॉक्टर साहब का साहित्य नहीं रखने देंगे, तो मैं उत्तम चंद जी बोला हम लोग भी नहीं आएंगे, बंद करो आपका, रखना पड़ेगा आपको डॉक्टर साहब का साहित्य, क्यों आप उस श्रीमत का अकेले रखते हैं। और ये चोट पे बहुत सारी चीज़ों में मन बिल्कुल बेधड़क निर्भीक वक्ता कोई भी हो, आगम प्रमाण से बात रखो तो ये बात स्वीकार। बहुत चीज़ें हैं।
डॉक्टर उत्तम चंद जी मोना से बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। हमारी दस साल से जो टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में क्लासेस चलते हैं वहाँ रेगुलरली पढ़ाते थे। रत्नकरण सावकाचार, स्वानुभूति दर्शन वगैरह ऊपर उन्होंने क्लास कंटिन्यूसली लिए थे। और हमारे जो 10 लक्षण का प्रोग्राम होता है टेलीफोन पर, उनमें भी समय सार के एक एक अधिकार पर हम हर साल पर आगे आगे बढ़ते हैं, तो उनमें भी उन्होंने प्रवचन दिए थे। तो उनकी क्षति तो कभी पूरी नहीं होगी। उनका जो संस्कार दिया विवेक जी में भी डाला है। विवेक जी भी हमारे क्लासेस में कभी कभी आते हैं। और विवेक जी ने डॉक्टर की पीएचडी की है समन भद्र आचार्य के जीवन के ऊपर, तो वो बताता है कि उत्तम चंद जी ने ऐसा पारा पोषा कि जो पुत्र भी उनकी तरह ही डॉक्टरेट करके और समन भद्र आचार्य पर लिखा। तो हम मोना की ओर से और आप सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।
सब अपन की जाती है।